खुदावन के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम पेश किया जाता है। दूसरे लफ्जों में आप सबकी सलामती हो। सो खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आज फिर हम सबको यह दिन ये मौका बख्श दिया कि हम सब इकट्ठे हों और उस बादशाह की प्रस्तुति करें, क्योंकि आज के दिन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिला कि आज का दिन देख सकें। इस दुनिया का अगर मुआयना किया जाए, जायजा लिया जाए, तो हर दिन लाखों के हिसाब से लोग मरते हैं और लाखों के हिसाब से लोग पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको आज का दिन नसीब हुआ है। इसलिए हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि उसने आज का दिन हमें बख्शा है, तो फिर किसी ना किसी मकसद के लिए बख्शा है, और उस मकसद के लिए आज हम सब यहां पर मौजूद हैं कि उसके कलाम को सीखें, उसके कलाम को सुनें और फिर अपनी जिंदगियों में उसके कलाम को जगह देने वाले बने। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम सब बहन भाई बुजुर्ग बच्चे खुदा के हुजूर झुकें और खुदावंद से उसकी हिकमत और दनाई मांगेंगे, ताकि आज का वक्त खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे, ताकि आज जितनी भी बातचीत खुदा के कलाम में से की जाए उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। सो हम सब अपने शख्सी हालत का जायजा लेंगे। अगर किसी किस्म का गुनाह गलती खता है तो खुदावंद माफ करने में सच्चा और आदल है। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, तेरी हजूरी में आते और तेरे शुक्रगुजार हैं आज तेरे कलाम के लिए, तेरे पाक रूह के लिए, आए हुए तमाम तेरे बहन भाइयों के लिए। खुदावंद जो तुझ पर ईमान रखते हैं उन सब के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। मेरे लबों का रखवाला बन। आज हम जो कुछ भी सीखें हमारी तरबियत नसीहत के लिए हो, और हम एक कान से सुनने वाले ना बने बल्कि सुनकर उस पर अमल करने वाले बने, और इब्लीस को मौका ना दे के इस कलाम को चुराए, बल्कि खुदावंद पूरे दिल पूरी जान से इसे कबूल करें। सो हम सब की रहनुमाई कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं। उसका दो बाप उसकी पहली तीन आयात को हम देखेंगे और इसमें से सीखेंगे। और इससे पहले कि इस हिस्सा को सीखें, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, खुदा की सोच है, हम सबको इसीलिए दी गई है कि हम खुदा की मर्जी को, खुदा के कलाम को, उसकी सोच को समझें। और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो यहां बाइबल मुकद्दस में हमें खासकर दो किस्म की बातों का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है, जैसे लानत और बरकत, जैसे मौत और जिंदगी, जैसे गुमराही और फिर गुमराही से निकलना, जैसे तारीकी और नूर, जैसे पाकीजगी और बदी, जैसे सच्चाई और फरेब। सो ऐसी बातों का हमें बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है दो किस्म के नजरियात, तवज्जो, हमारा सोचने का तरीका। एक तरीका क्या है? या तो हम फरोतनी में सोचते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि खुदावंद तू जोरावर है। ये वो रवैया है जिसमें हम अपने आप को खाकसार बनाते हैं। और फिर एक रवैया है बुगज का, अपने आप को बढ़ाने का, जिसमें हम कहते हैं कि खुदावंद तू नहीं बल्कि हम ही सब कुछ हैं। और इसी तरह एक और सोच है, या फिर हम रूहानी तौर पर सोचते हैं या फिर हम जिस्मानी तौर पर सोचते हैं। और फैसले भी दो किस्म के हैं, या तो हमारा फैसला बेवकूफी का फैसला होता है या फिर वो बहुत ही अकलमंद फैसला होता है। और हमारे काम और अमाल या तो फिर गलत होते हैं या फिर दुरुस्त होते हैं, और इसका नतीजा या तो फिर क्या निकलता है, बरकत निकलता है या फिर लानत निकलता है। सो मेरे साथ आज देखें नए अहदनामा में से इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत। आज आप सब जो यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये फैसला किया है कलाम खुदा को सुनने का, उसका नतीजा क्या होगा? बरकत। सो इफ्सियों 2 बाप उसकी पहली आयत में यू लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रफ्श पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के अरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानत तबाही तौर पर गजब के फर्जंद थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जो बहन भाई सुबह की इबादत में आते हैं, आप सबको याद होगा कि हम इस हिस्सा में आयत बा आयत सीख रहे हैं, और पिछले दिनों में जो हमने बात शुरू की सीखनी तीसरी आयत में से, के 2 किस्म की ख्वाहिशें हैं, अच्छी और बुरी। 2 किस्म की सोचें हैं, भली और चंगी, भली और बुरी। और हम सब जानते हैं कि इब्तदा ही में जब खुदा ने आदम को पैदा किया और हवा और आदम को खूबसूरत बाग दिया, जानवर दिए, कामल माहौल दिया, तो वहां पर खुदावंद खुदा ने यसु मसीह ने पाक रू ने वहां पर खुदा ने उनको क्या कहा था कि तुम्हारे पास सारा कुछ मौजूद है, लेकिन इस बाग का दरख्त जो बीज में है, जो नेकी और बदी का दरख्त है, उसमें से ना खाना। सो उनके पास एक फैसला था करने का। इसी तरह आज मैं चाहता हूं कि हम भी देखें, हम भी सोचें कि पालूस रसूल यहां पर क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें वो बताकर अभी बताएगा और सिखाएगा कि हम अपने जिस्म की ख्वाहिश में जिंदगी गुजारते हैं या फिर रूह की मर्जी के मुताबिक। जब हम लफ्ज जिस्म की ख्वाहिश को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस इसे बताती है कुछ इस तरह, यानी कि ऐसी ख्वाहिश जो बदी की, गुनाह की, बुराई की, ऐसी सोच जिसमें बदकरदारी, खराब, नाकस या गंदी या नकम्मी या कम दर्जे की ख्वाहिशें पाई जाती हैं। इसलिए याद रखें, जो भी जिस्मानी ख्वाहिश जिसमें किसी का बुरा, जिसमें किसी का फायदा नहीं होता, वो सब किसकी तरफ से हैं? जिस्म की तरफ से हैं, अबलीस की तरफ से हैं। इसलिए हमें हर रोज सोचने की जरूरत है कि जो फैसला हम कर रहे हैं, जो सोच हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी की बेटी, किसी के भाई, किसी की मां, किसी के फायदे के लिए, किसी के जिंदगी के बारे में, वो हम किस जोर में सोच रहे हैं? अपने जिस्म की ख्वाहिश में, जहां से क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मेरे साथ निकालें, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ऐसी बुरी ख्वाहिशों के जोर में जो जिंदगी इंसान गुजारता है वो जिस्म की ख्वाहिश में जिंदगी गुजारता है, और जिस्म के जोर में जिंदगी गुजारता है, और जिस्म की ख्वाहिश क्या पैदा करती है? मौत पैदा करती है, बुराई पैदा करती है, हसद पैदा करती है, गुनाह पैदा करती है, लड़ाई झगड़ा पैदा करती है, और जिस्म ही की ख्वाहिश बहुत दफा हम गिरजा घर में बैठे होते हैं हमारी तवज्जो कहीं और पर ले जाती है। जिस्म ही की ख्वाहिश है जो हमें सुस्ती डाल देती है। जिस्म ही की ख्वाहिश है जो हमें कहती है कि आज नहीं फिर कभी सही। इसलिए मैं चाहता हूं कि चंद एक हवाला जात देखें जो जिस्म की ख्वाहिशों के तलक से हैं। और जिस्म की ख्वाहिश सबसे पहले कहां से शुरू होती है? जब हम देखते हैं, जिसे कहा गया है बाइबल मुकद्दस में नजरी गुना, यानी कि जो कुछ हम देखते हैं उसकी बुनियाद पर हम फैसला करते हैं, और जब फैसला करते हैं तो फिर अमल पैरा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर आदम और हवा के जिंदगी में हुआ, हवा ने उस फल को देखा और उसने सोचा कि ये बहुत अच्छा मालूम होता है, फिर फैसला किया और क्या हुआ? गुनाह पैदा हुआ। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील उसका 5वां बाप उसकी 28वीं आयत। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को तालीम देते हुए सिखाते हैं कि हमारा देखना और नजर का गुनाह जो बुरी ख्वाहिश है किस तरह बर्बादी का बायस बनती है, और ये गुनाह है यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे को बयान करते हुए कहा, मत्ती 5 बाप उसकी 27वीं आयत में कहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था जना ना करना। ये यीशु मसीह ने उनको याद दिलाया कि तुम सुन चुके हो कि गुनाह ना करना, जना ना करना। और 28वीं आयत में क्या लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ गुनाह कर चुका। ये वो गुनाह है जो जिस्म की हालत में इंसान करते हैं, यानी कि जैसे बाइबल मुकद्दस में बताया गया था 10 अहकाम में कि तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। ये वो गुनाह है जो सोच में शुरू होता है, जिससे बुरी ख्वाहिश पैदा होती है। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा गुनाह क्या है? बुरा है। फिर मेरे साथ एक और देखें, ये बुरी ख्वाहिश का गुनाह था जो जिस्म में पैदा होता है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, और ये भी गुनाह गिना गया है, दौलत की ख्वाहिश होना, दौलतमंद बनने के लिए बंदा बुरे जतन करता है, बुरे रास्ते अपनाता है। एक दौलत जो खुदा देता है, लेकिन एक दौलत जो इंसान अपने जोर से, अपने बुरी रास्तों, राहों से और सोचों से अपनाता है। मेरे साथ निकालें 1 तिमोथियस 6:9-10। वहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल सिखाता है कि जिस्म की ख्वाहिश किस तरह तबाही और बर्बादी का बायस बनती है, और बहुत से इस जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते करते तबाह बर्बाद हुए हैं। ये वो जिस्म की ख्वाहिश है, और मैं चाहता हूं कि आप हम सब जानें कि हमें अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी और अकल के इरादों को पूरा नहीं करना है। 1 तिमोथियस 6:9-10। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है 9वीं आयत में, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी अजमाइश और फंदे और बहुत सी बहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमी को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। दौलतमंद होने की ख्वाहिश इंसान को भारती है कि वो हर तरह का गलत रास्ता अपनाए, हर तरह की वो गलत बाजी लगाए। उसमें इंसान क्या सोचता है, चाहे कोई भी नुकसान हो, दौलत की ऐसी आग है, दौलत ऐसी बला है जिसे कहा गया है, ऐसी बुराई की जड़ है जिसमें बहुत से लोग तबाह बर्बाद हुए। और 10वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि जर की दोस्ती, जर से मुराद यानी कि दौलत की दोस्ती, दौलत की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है। जिसकी आरजू में, ख्वाहिश के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो क्या है, आरजू, तमन्ना, चाहत और शौक, और फिर किसी चीज के लिए लत रखना, ख्वाहिश करना या हिर्स रखना। सो पालूस उसूल कहता है कि दौलत हर तरह की किस्म की हर बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छली कर लिया है। दौलत जिसे जिस्म की, जिसे जिंदगी में बहुत बड़ी बला और जड़ और बुराई की जड़ कहा गया है, इसमें बहुत से लोग बर्बाद हुए हैं, बहुत से लोग बर्बाद हुए हैं और अपने ईमान से गुमराह हुए, जिसमें हम देख सकते हैं कि बर्बादी या मौत पैदा करने की बात। आपको हनन्याह और सफीरा का जिक्र तो मालूम होगा कि सब लोग अपने हदिया लेकर आ रहे थे और उन्होंने भी फैसला किया कि अपनी जायदाद बेचकर रसूलों के पांव पर रखेंगे, उनको देंगे। और क्या हुआ जब उन्होंने सब कुछ बेच दिया और उनके दिल में जो तमन्ना और ख्वाहिश पैदा क्या हुई कि अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ रख छोड़ें, और जो रुपया पैसा उन्होंने खुदा के लिए ठहराया था क्या किया, उसमें से कुछ रख लिया और खुदा से झूठ बोला। और क्या पैदा हुआ, मौत पैदा हुई। इसलिए जिस्मानी ख्वाहिश क्या पैदा करती है, मौत, हसद और लड़ाई और झगड़ा पैदा करती है। और इसके बारे में खुदा का बंदा पत्रस हमें सिखाता है, यकूब हमें सिखाता है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, यकूब पहला बाप, यकूब का आम खत उसका पहला बाप, उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है, 14वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। हां, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर अजमाया जाता है। कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता कि किसी ने मुझे बहकाया। बहुत दफा लोग कह देते हैं कि मेरे बेटे को किसी ने शराब पीने पर लगा दिया, मेरे बेटे को किसी ने गुमराह कर दिया, मेरे बेटे को किसी ने यहां तक पहुंचा दिया। याद रखें, हर इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंसकर गलत फैसला करता है, और बहुत दफा गलत फैसला हमें जेल, बदनामी, मां बाप की बेइज्जती और फिर बहुत दफा मौत तक भी ले जाता है। और क्या हुआ, 15वीं आयत में लिखा है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। जब हमारे जहन में हमारी जिस्मानी ख्वाहिश जोरावर होती है तो फिर हमारी ख्वाहिश क्या पैदा करती है, गुनाह को पैदा करती है, और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा होती है। ये मौत रूहानी तौर पर आरजी मौत भी होती है और बहुत दफा जिस्मानी मौत का बायस भी बनती है। बहुत सा हमें जिक्र मिलता है बाइबल मुकद्दस में कि जिन्हों लोगों ने गुनाह में जिंदगी गुजारी उन सब को क्या हुआ, मौत का सामना हुआ। जैसे नूह के दौर के लोग, उन्होंने गुनाह में 120 साल तक जिंदगी गुजारी, आखिर को क्या उनका नतीजा निकला, मौत। सदूम और मूरा के लोगों में इब्राहिम और फिर लूत जो इब्राहिम का भतीजा था, वहां पर वो गया, उनको बताता रहा, उनके दरमियान रहा, लेकिन उन्होंने तोबा ना की तो क्या पैदा हुआ, खुदा ने आखिर को सदूम और मूरा को फना किया और आसमान से आग और गंधक बरसाई, तो क्या पैदा हुई, मौत। मिस्र में, मिस्र की फौज ने, फरून ने लगातार खुदा की नाफरमानी की, खुदा को इनकार किया, तो क्या पैदा हुई, मौत। हजारों लाखों सिपाही उसकी फौज फना हुई। जब बनी इसराइल कौम ने मूसा के खिलाफ गुनाह किया, उसे बुरा भरा कहा, तो जब आग फूंकने वाले सांप खुदा की तरफ से भेजे गए तो क्या हुआ, जिन जिन को उन सांपों ने काटा वो सब मरे। इसलिए ख्वाहिश हामला होती है और गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ जाता है तो क्या पैदा होती है, मौत। बहुत दफा रूहानी और बहुत दफा जिस्मानी मौत। ग्रंथियों की कलीसिया में लोग क्या करते थे, बुतपरस्ती में और खुदा से जुदाई में और एक दूसरे में लड़ाई झगड़े में और गुनाह में जिंदगी गुजार रहे थे, और उनमें से बहुत से लोग मर गए। किस लिए? गुनाह के बायस। और आगे चलकर खुदा का बंदा यकूब पांचवें बाप में भी ये बात कहता है बड़े दलेरी के साथ, और सिखाता है आगे चलकर कि लड़ाई झगड़ा क्या पैदा करता है, मौत पैदा करता है। मेरे साथ एक और हवाला देखें। ये सारे हवाला जात अगर लिख सकते हैं तो लिखें कि बुरी ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिशें क्या कुछ कर सकती हैं, कैसी बर्बादी और तबाही पैदा कर सकती हैं। यकूब चार बाप उसकी पहली आयत। ये उस वक्त का वाकया है जब उस वक्त यरूशलम की कलीसिया के ईमानदार जैसे आप आज सब यहां पर मौजूद हैं, उनमें हसद, लड़ाई और झगड़ा पाया जाता था। और पालूस रसूल और फिर यकूब खुदा का बंदा इस बात को बड़े वाजिया तौर पर कहता है कि लड़ाई झगड़ा और बुरी ख्वाहिशें किस की तरफ से हैं, खुदा की तरफ से नहीं। सो यकूब चार बाप उसकी पहली आयत में लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। वो सवाल करता है, ये खुदा की तरफ से नहीं, ये खुदा ने नहीं पैदा किए, किस तरह पैदा हो गए। क्या कहता है, क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद कराती हैं, जो तुम्हारे जिस्मानी हिस्सों में जो तुम्हारी बदन में ख्वाहिश पैदा करती हैं कि क्या हो, हसद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। और दूसरी आयत में क्या कहता है, तुम ख्वाहिश करते हो, सादा से लफ्जों में तुम कुछ चाहते हो कि जो कुछ दूसरे के पास है वो तुम्हारे पास हो, तुम तमन्ना करते हो, तुम उम्मीद करते हो, तुम मांगते हो। इस लफ्ज में इतना कुछ बयान करता है वो, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। और उनको बताता है कि अगर तुम मांगते हो तो मिलता नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। इसलिए हमें हर रोज इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है और आज देखने की जरूरत है, क्या आज हमारी ऐसी हालत तो नहीं, क्या आज हम जिस्म की मर्जी को पूरा तो नहीं कर रहे, आज हम जिस्म के जोर में जिंदगी तो नहीं गुजार रहे, आज हम जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा तो नहीं कर रहे, आज हम जिंदगी और जिंदगी की खुशियों और जिस्मानी और दुनियावी बातों में मगन तो नहीं है। क्योंकि पालूस रसूल इसके बारे में बड़े वाजिया तौर पर कहता है कि हमें इन बातों से परहेज करना चाहिए। मेरे साथ एक और हवाला देखें, पहला यूहन्ना दो बाप उसकी 16 और 17 आयत। पहला यूहन्ना यानी कि यूहन्ना का पहला आम खत उसका दो बाप उसकी 16वीं आयत में फिर खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। हसद, बुगज, लड़ाई, झगड़ा, फरेब, लालच, बुतप्रस्ती और एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे को नीची निगाह से देखना, खावंद और बीवी के दरमियान लड़ाई और झगड़ा, मां बाप और बच्चों के दरमियान کوئی بھی رشتہ اور تعلق یا کسی قسم کی کوئی محبت نہیں، یا پھر کلیسیا کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں، خدا کے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہیں اور بغض اور راس بازی کی بجائے پالٹی بازی میں پھنسے ہوئے ہیں، تو خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے نہیں، باپ کی طرف سے نہیں، یہ دنیا کی طرف سے ہے، دنیاوی ہے، ابلیس کی طرف سے ہے، اور یہ جسم کی خواہش ہے. اور 17 آیت میں کہتا ہے دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹتی جاتی ہیں. یہ دنیا فنا ہوگی، اس کی خواہشیں مٹتی جائیں گے، لیکن خدا کا، لیکن کیا لگتا ہے، جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. آج سوال یہ ہے کہ آج ہم جسم کی خواہشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان بری تمناؤں کو پورا کر رہے ہیں، ان باتوں کو پورا کر رہے ہیں جو تباہی اور بربادی کا، یا حسد یا لڑائی یا جھگڑا یا زندگی میں بے اطمینانی کا باعث ہیں، ان کو پورا کر رہے ہیں، یا پھر اپنی زندگی میں اپنے جسم کی خواہشوں پر، دنیا کی خواہشوں پر، دنیا اور لالچ اور بت پرستی اور حسد اور بغض اور لڑائی جھگڑے پر غالب آ رہے ہیں. کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے حکم کے طور پر کہ اپنے جسم میں، اپنی زندگی میں گناہ کو راج یا بادشاہی کرنے نہ دو، نہ دو، اسے موقع نہ دو، تمہیں ایسی قوت اور طاقت حاصل ہے، وہ کہتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حوالہ کہاں پر ہے، نکالیں حوالہ میرے ساتھ، دیکھیں رومیو 6 اس کی 12 نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 اس کی 12 میں پالوس رسول کہتا ہے کہ تم جو مردہ تھے تمہیں زندہ کیا گیا ہے، تم جو خدا کے دشمن تھے اب اس سے صلح ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں خدا کے پاک روح کا زور حاصل ہے. اور رومیو 6 اس کی 12 میں کہتا ہے پس گناہ تمہارے فانی بدنوں میں، یعنی کہ گناہ، اس کا زور، اس کی تاثیر تمہارے جسمانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے، اختیار نہ رکھے، تم پر غالب نہ آئے جس طرح بہت سے دوسروں پر غالب آئی ہے، بادشاہی نہ کرے بلکہ تم اس کی خواہشوں کے تابع، بادشاہی نہ کرے بلکہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. پالوس رسول بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ ہمیں اس کے تابع نہیں رہنا. کیا لکھا ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. ہمیں اس کی خواہشوں پر، جسم کی خواہشوں پر غالب آنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، ہمارے پاس چند منٹ باقی ہیں تاکہ ہم اس میں سے سیکھیں. رومیو 13 اس کی 14 میں لکھا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نہ کرو. جب ہم یسوع مسیح کو پہنیں گے، جب ہم یسوع مسیح کو تکتے رہیں گے، جب ہم یسوع مسیح پر بھروسہ کریں گے، جب ہم یسوع مسیح کی زندگی میں سے سیکھیں گے، ہم جسم کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے. اور یہ کس طرح ہوگا، میرے ساتھ نکالیں گلتیوں 5 اس کی 16 گلتیوں 5 اس کی 16 سوچتے ہوں گے کہ پادری صاحب لگتا ہے کہ آج ہم سب کو پادری بنا دیں گے. یہ ضرورت ہے، یہ آپ کی جنگ ہے جس کے لیے خدا نے ہم سب کو بلایا ہے کہ روحانی جنگ لڑیں، کہ جسم کی خواہشوں پر غالب آئیں. اور کس طرح آئیں گے، بہت دفعہ ہم سنتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، لیکن صحیح راز پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح غالب آئیں. گلتیوں 5 اس کی 16 اور یہ ہم کو کرنا ہوگا، کوئی اور نہیں کرے گا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ روح کو موقع دے یا پھر جسم کی خواہش کو پورا کریں، روح کی تمنا پورا کریں یا پھر جسم کی تمنا پورا کریں، گناہ کو اپنے اوپر بادشاہی کرنے دیں یا پھر रूह को अपने ऊपर बादशाही करने दें। इसलिए पालूस कहता है गलतियों 5:16 में, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अगर रूह के मुआफिक चलोगे, जब हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो क्या फल पैदा होगा? नफरत हरगिज नहीं, बुगज हरगिज नहीं, लड़ाई झगड़ा हरगिज नहीं, तफरके हरगिज नहीं, बुतप्रस्ती हरगिज नहीं, लालच हरगिज नहीं, हसद हरगिज नहीं, जुदाइयां हरगिज नहीं, नशाबाजी, रंग और दूसरी बातें नहीं। जब हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो क्या पैदा होगा? मोहब्बत, इत्मीनान, तसल्ली, एक दूसरे की रहनुमाई, एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की अच्छाई चाहेंगे, खुदा की मर्जी चाहेंगे, शराफत के काम होंगे, नेकी के काम होंगे, ना के बुराई के काम। जब जब आप अपने आप को देखेंगे कि आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो याद रखें कि वो जिस्म की सोच है, खुदा की तरह नहीं सोच रहे। जब जब किसी की नौकरी के बारे में सुनकर खुशी होगी, तो जाने कि आप मसीह की खुशी मना रहे हैं। अगर किसी की नौकरी अच्छी लग जाए, तो आप या कोई भी जब अपने अंदर जलन महसूस करे, तो याद रखें कि यह जिस्म की ख्वाहिश है, जिस्म के मुआफिक जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत एक दूसरे की बेहतरी चाहती है। और मोहब्बत क्या है? रूह का फल है। इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और पालूस रसूल और फिर पत्रस और फिर यूहन्ना और फिर खुदावंद यीशु मसीह और खुदा बाप सब ये चाहते हैं कि हम इस लड़ाई को लड़ें, ताकि हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करें। मेरे साथ एक हवाला देखें और फिर हम खत्म करेंगे। नए नामा में से पहला पत्रस उसका 2 बाप, पहला पत्रस उसका 2 बाप उसकी 11वीं आयत। यहां पर खुदा का बंदा पत्रस कहता है, अब ए प्यारो, यानी के बहुत ही प्यारो, यानी के मसीह में अजीज, यानी में मसीह में मोहब्बत के लायक लोगो, उसका कहने का मतलब है ए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, यानी के तुम्हारी मिन्नत, यानी के इल्तमास करता हूं, भीख मांगता हूं, दरख्वास्त करता हूं, तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफर जानो, जानकर। जब हम अपने आप को परदेसी और मुसाफर जानकर इस जमीन पर जिंदगी गुजारेंगे, तो क्या कहता है? उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। दोबारा इस आयत को पढ़ूंगा, ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। उन तमाम ख्वाहिशों से परहेज कब होगा? जब हम रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारेंगे, रूह के मुआफिक चलेंगे। इसलिए हमें जो खुदा के लोग हैं, हमें अपनी जिस्म की बुरी ख्वाहिशों को क्या जानने की जरूरत है? मुर्दा जानने की जरूरत है कि हमारी जिस्म की ख्वाहिशें मुर्दा है। जैसे पालूस रसूल कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इसीलिए पालूस रसूल इस काबल था कि लोगों से मोहब्बत करे, लोगों की भलाई चाहे, और मसीह के लिए उसने हर तरह का दुख उठाया। इसी तरह आप भी जब इस बात को, हम सब जब इस बात को याद रखेंगे, इस बात को रट लेंगे, अपना लेंगे कि हम नहीं बल्कि मसीह हम में जिंदा है, तो फिर फल पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं होगा, बुराई पैदा नहीं होगी। हम मुट्ठी भर जो मसीही न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते हैं, इनमें से हम सब जब एक जगह इकट्ठे होंगे, तो हम में इत्तफाक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूह के मुआफिक नहीं। हर कोई हसद, बुगज, लड़ाई झगड़ा 5 साल 10 साल पुरानी बात को लेकर बैठा हुआ है। इसलिए पालूस रसूल कहता है, जिस्मानी बातों से भागो। और कौन सी बातें अपनाओ? रासबाजी की, दयानतदारी की, ईमानदारी की, मोहब्बत की, सब्र की, तहम्बल की, एक दूसरे से प्यार की, एक दूसरे की भलाई की, शराफत की बातें, नेकी की बातें, सच्चाई की बातें और मसीह की तसल्ली की बातें। जब ये होगी तो वो कहता है कि तुम्हें बहुत सा प्यारा फल लगेगा। इसलिए फैसला आज हमारे हाथों में है कि हम किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, रूह के माफिक या जिस्म के माफिक, बरकत में या लानत में, रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, अकलमंदी के साथ या फिर नादानी के साथ, गलत फैसला करेंगे या फिर दुरुस्त फैसला करेंगे, फरोतनी से जिंदगी गुजारेंगे या फिर हसद और बुर्गज और हर तरह की जिस्मानी बातों में। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम खुदा के जुड़ चुके, फैसला हर रोज आपको करना होगा, कोई और आपके लिए फैसला नहीं करेगा। यीशु मसीह आपके लिए फैसला नहीं करेगा, उसने आपको ये कुव्वत दी है कि आप खुद उसका फैसला करें कि गिरजा घर में आएंगे या फिर घर बैठकर कोई और फजूल काम करेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे या फिर खुदावंद यीशु मसीह को कहेंगे कि नहीं अगले हफ्ते, नहीं अगले हफ्ते, हां और ना आपके हाथ में है, अच्छाई और बुराई आपके हाथ में है, नेकी और बदी आपके हाथ में है, तरीकी और नूर में चलना आपके हाथ में है। ऐसी बातें और कोई नहीं बताएगा, सिर्फ यीशु मसीह बताता है। सो आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हम सब इस पर अमल करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन।